जी बिस्मिल्लाह करें।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं पूछूं?
जी इरशाद।
सर वो सूरह नजम में है ना कि हजूर अलैहिस्सलाम ने यानी अल्लाह मियां से जब मुलाकात की तो दो कमान का फासला था,
जी
तो मतलब फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने किन के लिए फरमाया कि या अल्लाह मुझे रफीकी अल्लाह से मिला दे?
पहले तो काबा कौसैन को समझ ले। वो लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है कुरान हकीम में वो है काबा कौसैन। अब इसकी मिसाल देखें, कौस किसे कहते हैं? दायरे को। अब आप एक प्याली लें और एक पिरच लें तो क्या होगा? पिरच का दायरा जो है वो भी तो एक कौस है ना, और प्याली का घेर जो है वो भी एक कौस है, हाँ या नहीं? यानी ये दो दायरे हैं। अब आप जग को देखें तो जग का मुंह गोल है, उधर गिलास का मुंह भी गोल है, लेकिन गिलास छोटा दायरा है और जग का एक बड़ा दायरा है। बाल्टी के साथ गिलास का कंपेयर कर लें तो ये दो कौसे हैं ना, एक बड़ी कौस है एक छोटी कौस है। अब हमने क्या तमाशा मचाया काबा कौसैन दो कमानों के दरमियान के बराबर फासला। अब कमान 6 फुट की है तो 12 फुट का फासला हुआ। ये फिकर का एक जाविया है। अब दूसरा जाविया ये है कि आप जग को गिलास के साथ टच करें तो कोई फासला रहा? दो कौसें आपस में मिल गईं। अब बाल्टी को आप डोंगे के साथ टच करें तो डोंगे और बाल्टी का किनारा जो है वो दोनों कौसे हैं या नहीं? यानी दो कौसें आपस में मिल गईं। अब दो सुफियर हैं, अल्लाह का एक अपना सुफियर है, ठीक है, और वो एक लामहदूद सुफियर है। बंदे का एक सुफियर है जो कि महदूद सुफियर है, एक छोटा बुलबुला है एक बड़ा बुलबुला है। अब छोटा बुलबुला बड़े बुलबुले के साथ बाहर से टच करता है, क्या करता है? कोई फासला नहीं रहा। यानी बंदा जहन में अल्लाह के इतने करीब हो गया, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने करीब हो गए कि कोई फासला नहीं रहा। लेकिन अगली बात, ये बात वाजे हो गई काबा कौसैन का क्या मतलब है। ये कमाने बीच में ना डालें, कमानों को आपस में जोड़ दें। फर्क समझ आ गया?
जी सर समझ आ गया।
अब अल्लाह रब्बे करीम से इस दर्जे मुलाकात के बाद हजूर अलैहिस्सलाम, ये वाक्या कब हुआ? 9 नबवी को, यानी नबुवत मिलने के 9 साल बाद। गौर करें, वही आती है गारे हिरा में, उसके बाद नबुवत मिलती है, वो ऐलान करते हैं, उसके बाद 9 साल बाद मक्का से हिजरत से 4 साल पहले क्या कहा कि काबा कौसैन। कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि बंदा मेरे इतने करीब हो गया कि दरमियान में कोई फासला नहीं रहा। अब वही बंदा आपका क्या ख्याल है, यहां रुक गया होगा? वो आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा, फिर क्या हुआ? वफात से पहले, यानी कि 4 साल मक्के में और 10 साल मदीने में गुजारने के बाद अपने विसाल से कब्ल क्या दुआ फरमा रहे हैं? वाह हो वाह, बल रफीकुल आला, और तू ही तो है जो सबसे आला रफीक है। वाह हो वाह, और तू ही तो है बल जो के रफीकुल आला, सबसे आला रफीक। यानी अल्लाह से वो ऐसी रफाकत मांग रहे हैं। मैंने हजूर मुर्शिदे करीम से ये सवाल पूछा कि जब हजूर मेराज पे उनके इतने करीब हो गए कि कोई फासला नहीं रहा, तो फिर वो کیا رفاقت مانگ رہے تھے. تو مرشد کریم نے فرمایا کہ وہ سپیس لیسنس, ڈائمینشن لیسنس میں ملنا چاہتے تھے. ایسا مقام جہاں کوئی ڈائمینشنز نہیں ہیں. دیکھیں جب ہم اللہ کہتے ہیں تو کیا ہوا, ڈائمینشنز آ گئیں. یعنی قربت کا وہ مقام جہاں پہ کوئی دوسری چیز موجود نہ رہے, ایون ڈائمینشنز بھی نہ رہیں. بندہ اللہ میں تحلیل ہو جائے. رفاقت, رفاقت, یہ لفظ رفیق پہ غور کرے, کیا ہوتا ہے رفیق, جو ساتھ ہو, ساتھ کو سمجھیں, ساتھ. وہو و بل رفیق لالا, تو ہی تو ہے جو سب سے اعلیٰ رفیق ہے. یعنی آپ کا کوئی کتنا بھی اچھا دوست ہو, وہ آپ سے الگ ضرور ہوتا ہے وقتی طور پہ. بھلے آپ نے رات کو اپنے گھر جانا ہے, وہ اس نے اپنے گھر جانا ہے, ہاں یا نہیں. لیکن یہ رفاقت جو کہ مستقل ہے, مسلسل ہے, واضح ہو گئی بات؟
جی سر, تھینک یو سو مچ.
جی
سر, ایک اور سوال تھا, لیکن آپ نے وہ شیئر کر دیا تھا, تو وہ اس کے بھی ذرا وضاحت فرما دے. میں نے یہی سوچا ہوا تھا, آپ نے شیئر کر دیا کہ با ادب با نصیب.
جی جی,
ان سلسلے میں یہی, اس کی ذرا وضاحت فرما دے نا.
دیکھیں لفظ ادب کا مطلب ہم نے لیا ہے ریسپیکٹ کرنا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جو ریسپیکٹ فل ہے ہی از فارچونیٹ. ہمارے ذہن میں اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو کسی کے لیے ریسپیکٹ فل ہو جاتا ہے. تو میں نے سوال اچھالا یا آپ سے متوجہ کیا کہ کسی بھی فائیو سٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو وہاں کے جو بیرے ہوتے ہیں, جو سرو کر رہے ہوتے ہیں, سٹیورڈز ہوتے ہیں, ان سے زیادہ کوئی, آپ نے دیکھا کسی کو مؤدب کتنی تمیز سے بات کرتے ہیں, کتنی اخلاق سے جھک کے وہ چیز سرو کرتے ہیں. تو کیا آپ انہیں با نصیب بھی مانیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. تو پھر ادب کا اصل مفہوم سمجھیں. ادب کا ایک مفہوم تو ضمیر جعفری نے بیان کیا ہے کہ میں ان کا بہت لٹریچر کرتا ہوں, جو مرغ مسلم کو مرغ مسلم پڑھتے ہیں. مرغ مسلم کو مرغ مسلم پڑھتے ہیں. غور کریں ذرا کیا کیا شرارتی تبصرے ہیں. دیکھیں ادب کا لغوی مطلب ہے نرمی. جب آپ کسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اسے مولڈ کر دیتے ہیں, کسی اور میننگ میں استعمال کرتے ہیں, تو اس کو ہم ادب کہتے ہیں, یعنی لٹریچر کہتے ہیں, ہاں یا نہیں. تو ادب کا اصل مفہوم کیا ہوا؟ نرمی. جب کسی بندے کے اندر نرمی ہوتی ہے, با ادب, یعنی وہ ادب والا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر نرمی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ مثال لیں موم. موم میں جب آپ سکہ رکھ کے دبائیں گے کیا ہوگا؟ سکے کے جو نقوش ہیں, جو اس پہ تصویر بنی ہیں, وہ کہاں, وہ موم میں منتقل ہو جائے گی, نصب ہو جائے گی, ہاں یا نہیں. اسی طرح جب بندے کے ذہن میں نرمی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد کے नकुश को अपने अंदर मुर्तसिम होने देता है, नक्श होने देता है। इसको कहा बादब बानसीब, यानी नसब हो जाते हैं मुर्शिद के नकुश उसमें। अगर वो बेअदब है यानी कि उसमें नरमी नहीं है तो उसमें वो नसब नहीं हो सकते। अब इसकी मिसाल है कि भी आप पत्थर पे रख के सिक्के को जितना मर्जी दबाएं, सिक्के को पत्थर पे रख के आप हथौड़े से मारें क्या होगा, सिक्के के नकुश तबाह हो जाएंगे, हाँ या नहीं? पत्थर पे नहीं मुंतकिल होंगे। इसी तरह आपने देखा होगा पुराने जमाने में खत पे लाख लगाई जाती थी और उसे मोहर, उसके ऊपर एक लोहे की या तांबे की मोहर जिसमें कुछ नकूश होते थे, कुछ लिखा होता था, जब उस पे लगा देते थे, गरम करके लगाते थे ना लाख को, जब वो गरम होती थी तो नरम होती थी, तो उस नरमी में उस मोहर के नकूश सब्त हो जाते थे, यानी कि उसमें नसब हो जाता था। इसको कहते हैं मोहर लगाना, यानी नकूश मुंतकिल हो जाते हैं। अब जब हम पीरो मुर्शिद का तसव्वुर करते हैं, मुराकबा तसव्वुर शेख में जब हम उनको सोचते हैं, तसव्वुर का मतलब तस्वीर कशी करना नहीं है, जब हम उनको सोचते हैं तो उनके तर्जें, उनकी जो नकूश हैं, जो उनके जाविया फिकर है, उनका जो जेनी सांचा है, वो हमारे अंदर नक्श होना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि हम एक्सेप्ट तो करें। देखिए ना, कोई भी चीज आपके अंदर कब नक्श नसब होगी, व्हेन यू विल एक्सेप्ट इट। जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आप देखें ना, तसव्वुर शेख करते हैं, मुर्शिद करीम की कुतब पढ़ते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, लेकिन अपनी तर्ज फिक्र से बाज नहीं आते, क्या हुआ, क्या कहलाएंगे? इसको कहते हैं शकीउल कल्ब होना, यानी दिल का इतना सख्त होना कि वो सब कुछ देखते भालते उसका असर कबूल ना करे। ये जो असर कबूल करने की एबिलिटी है, इसको बादब कहते हैं, एबिलिटी टू एक्सेप्ट। अब ये डिजायर बन जाए कि जी मुझे अपने पीरो मुर्शिद जैसा बनना है, गौर करें क्या होगा, आपके अंदर पीरो मुर्शिद की तर्ज फिक्र नसब होती चली जाएगी, फिर उनका जहन मुंतकिल होगा, फिर उनकी सलाहियतें मुंतकिल होंगी, फिर उनका इल्म मुंतकिल होगा जो उनको उनके पीरो मुर्शिद से मुंतकिल हुआ था। ठीक हो गया
जी सर, थैंक यू।
वाजे हो गया कि बाद बानसीब क्यों लिखवाया था हजूर कलंदर बाबा वालिया ने? सबसे पहला जुमला अब्बा ने बताया मुझसे, पहला जुमला जब उन्होंने नोटबुक में लिखवाने लगे तो कहा इसके ऊपर लिखो बादब बानसीब, अगर तुम में नरमी होगी तो ये सब कुछ तुम्हारे अंदर नसब हो जाएगा। अगर तुम में नरमी नहीं होगी, अदब नहीं होगा, देखे ना, नरमी, नरमी का लफ्ज जहन में रखें, जब नरमी होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नरमी नहीं होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप में अकड़ होगी, आप में अब्बा ने तो यहां तक कह दिया भाई अगर नरमी नहीं है तो इसका मतलब मुनाफ़क़त है, आप बज़ाहिर नरमी का इजहार कर रहे हैं लेकिन अब लहजे में नरमी है, बातों में नरमी है, लेकिन जहन में वो नरमी नहीं है कि आप नक्श को अपने अंदर नसब होने दें। बात जरा गहरी हो गई?
नहीं सर, सही है, समझ आ गई।
अल्लाह खुश रखे आपको।
थैंक यू सर।
मोस्ट वेलकम। जी जी वालेकुम अस्सलाम।
तकाजे की तकमील से शारी हासिल होती है,
तस्कीन मिलती
है, शारी के बाबत
तस्कीन, लफ्ज है तस्कीन। हाँ जी, देखें जब आप पानी पीते हैं क्या होता है, आपको सुकून आ जाता है। ये सुकून क्या है कि तकाजे की तकमील हुई, आपको प्यास लगी, प्यास एक तकाजा है, जब उसकी तकमील हुई यानी आपने पानी नोशे जां किया। गौर करें ये लफ्ज नोशे जां क्या है, जब पानी गिलास में है तो वो पानी है, लेकिन जब आपने पी लिया तो क्या वो पानी रहा? नहीं, अगर मैंने पिया तो वो मकसूद बन गया। अब आप पानी को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हाँ या नहीं? पानी आपके वजूद का एक हिस्सा बन गया, उसने आपके वजूद को सैराब किया और एक तकाजे की तकमील हुई। जब तकाजे की तकमील हुई तो क्या हुआ, अब आपको सुकून मिल गया, तस्कीन मिली। तस्कीन का लफ्ज सुकून से, जब ये सुकून मिला तो क्या हुआ, अब आप अपने मकसद हयात को अचीव करने के लिए तैयार हो गए। मकसद हयात क्या है? ये जो लफ्ज है ना मकसद हयात, इसको समझे। हम इसी लफ्ज को इग्नोर किए हुए, हम सिर्फ तकाजों की तकमील के चक्कर में पड़े हुए। वो एक तकाजे की तकमील करते हैं, तस्कीन पाते हैं, और दूसरे तकाजे की तकमील के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो पूरा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तकाजे की तकमील के साथ जो तस्कीन यानी सुकून मिला तो अब आपको किधर मतवज होना है, मकसद हयात की तरफ। मकसद हयात क्या है? आपको अल्लाह की अता करदा सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। अल्लाह की अता करदा सलाहियतों का इदराक हासिल करना है, उनका इस्तेमाल करना है। क्यों? गौर करें, कायनात में हर चीज सब है लिल्लाह, माफ समावात व माफ अर्ज, जो कुछ भी है कायनात में यानी जमीन और आसमानों में वो अल्लाह के लिए तस्बीह कर रहा है। सब है लिल्लाह, अल्लाह के लिए काम कर रहा है, तस्बीह कर रहा है यानी ड्यूटी पूरी कर रहा है। क्या ड्यूटी पूरी कर रहा है? आप देखते हैं कि भी पौधे लगे हुए किसी के हाथ में तस्बीह नहीं है, इतने जानवर फिर रहे हैं किसी के हाथ में तस्बीह नहीं है। यानी ये तस्बीह का लफ्ज जो है ये हमने कंट्राइव किया है। असल मफहूम इसका है ड्यूटी पूरी करना। अब पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, निशास्ता बना रहे हैं और अपना सीड बना रहे हैं, तीन काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए? नहीं, वो मेरे और आपके लिए और हैवानात के लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं। हैवानात क्या कर रहे हैं? पौधों का मतलब पत्ते और घास खा के या उसका स्टार्च खा के क्या कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करके गोश्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जानवरों की खाल के जूते बना के पहन रहे हैं, आप उनकी ऊन के कपड़े बना के पहन रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, उनका गोश्त खा रहे हैं। नबातात, जमादात और हैवानात तीनों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ या नहीं? आपका क्या मुसर्रफ है, आप किस काम आ रहे हैं, पता ही नहीं? अल्लाह रब्बे करीम ने आपको इसलिए तखलीक फरमाया कि आप इन चीजों को इस्तेमाल करें, इनसे इस्तफादा करें, अपने मादी वजूद को आप बरकरार रखने के लिए तीनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, जमादात, हैवानात, नबातात और हैवानात, हाँ या नहीं? तकाजों की तकमील हो रही है लेकिन मकसद नहीं पूरा हो रहा। मकसद हयात क्या है? क्या ये दुनिया? तो आंसर इज नो। असल मकसद क्या है? असल मकसद अल्लाह ने एलानिया कहा, इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, आपको खलीफा बनाया गया। यानी खलीफा कौन होगा? जो अल्लाह की बात को समझेगा, जो अल्लाह के निजाम को समझेगा। जब आप अल्लाह की बातों को समझेंगे तभी तो आप अल्लाह के निजाम को समझेंगे। जब आप निजाम को समझेंगे तो आप निजाम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अदरवाइज तो आप खाएंगे, मूतेंगे और हगेंगे, यही करते रहेंगे सारी जिंदगी। मकसद की तरफ तवज्जो ही नहीं। मकसद हयात क्या हुआ? अल्लाह की बात को समझना ही इंसान के लिए मकसद हयात है। आप देखें ना, किसी के क्या काम आ रहे हैं? कोई काम नहीं आ रहे, इसलिए कि आपसे एक बरतर दर्जे का काम अल्लाह ने लेना है। क्या? अल्लाह चाहता है कि आप उसकी बात सुने, उसको समझें और फिर उसके मुताबिक अमल करें। ये अबदियत कहलाता है, ऐन के साथ अबदियत, अबद। अब जब कलमा शहादत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, के हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बंदे हैं और उसका भेजा हुआ रसूल है। अब्द किसे कहते हैं? जो अल्लाह के निजाम में उस तरह काम करे जिस तरह अल्लाह चाहता है। ये है सारा निजाम। आप कहें जी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम कर रहे हैं अपने घर में। अब जो कुछ कर रहे हैं, आपको इस घर में किसने रखा? अल्लाह ने रखा। आप कपड़े धो रहे हैं, ये भी इसी निजाम का हिस्सा है। आप बर्तन मांज रहे हैं, इसी निजाम का हिस्सा है। आप इसे खुश दिली से कर रहे हैं। आप खाना पका के घर वालों को सर्व कर रहे हैं, आप यही काम कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। बात कुछ लंबी हो गई, माफी चाहता हूं। समझ आ गई आपको? आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा अच्छा सवाल पूछा। जी जनाब। जी जनाब।
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। दोबारा कहिए किसका?
या बदियू लजाए बिल खैर या बदियू।
बदी कहते हैं किसी चीज को आगाज देने वाला, या बदियो ऐ आगाज देने वाले। देखे ना, किसी भी चीज को बिल्कुल नई बात को कहने वाला या करने वाला बदी कहलाता है। इसी से लफ्ज बिदात है। बिदा कहते हैं किसी चीज को जर्मिनेट करना, यानी बीज में से जब पौधा पहली बार उगता है उसको जर्मिनेशन पावर कहते हैं, इसको बिदात कहा है। हमारे यहाँ तो बिद्दत का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, कोई नई बात कहो तो कहते हैं ये बिद्दत है। अब या बदियो, जो हर लहजा एक नई चीज तखलीक कर रहा है, एक नई बात। या बदियो अजायबे बिल खैर, अजायब कहते हैं अजीब चीज को, ऐसी बात जो इंसानी अकल के लिए एक नया एंगल रखती हो। बिल खैर, साथ खैर के, बिल खैर साथ खैर के, खैर के साथ यानी अच्छाई के साथ, पॉजिटिवली। अल्लाह के हर काम में पॉजिटिविटी है। अब जरा गौर करें, या बदीउल अजायबे बिल खैर, अजायबात यानी जो अकल के लिए नई चीज हो उसको जारी करने वाले, और वो भी खैर के साथ, अच्छाई के लिए। वाज़े हो गया? वेलकम। और जी जनाब,
उसमें लिखा कि सीने में कोई चीज महफूज करना, ये भी इसी तरह ही कि नक्श जो बने बनने देना या महफूज।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब लव सीने को जरा समझें। देखें, सीने से मुराद है जहन की अंदरूनी सतह। हमारे यहाँ सीना जो है वो बाहर की।
यही सवाल मैं करने लगी थी कि हम वो आमतौर पे फुआद को समझते हैं, इनर सेल्फ अंदर को समझते हैं, उसे आपने बताया कि जहन को कहते हैं इनर सेल्फ।
जी देखे ना, आप इनर सेल्फ कहते रहे और अपना ऑपरेशन करके तो पेट खोल के तो देखेंगे गुर्दे क्या कहाँ और जिगर क्या कहाँ है और फेफड़े कहाँ है और मैदा कहाँ है, ये इनर सेल्फ है? नहीं, इनर सेल्फ आपके जहन में है। आपका जहन जो है यही इनर सेल्फ है। जहन, ब्रेन नहीं कह रहा, लव दिमाग नहीं कह रहा, माइंड। माइंड जो इनकॉर्पोरियल है, इनविजिबल है, गैर मादी है। हम चूंकि मादियत में खोए हुए मखलूक हैं, इसी चीज का हमें बार बार कहा जा रहा है कि मादियत से निकलो। मादियत से निकलेंगे तभी तो आपको अपने पता चलेगा कि मेरा वजूद, मेरा मादी वजूद सारे का सारा मेरे जहन की वजह से, और मेरा जहन मेरी रूह की एनर्जी से चल रहा है, और मेरी रूह को और मेरे जहन को मेरी जात चला रही है। ये तीन जुमले याद रखें, हमारी जात अल्लाह की तजल्लिये जात का एक नुक्ता होने के नाते अल्लाह की सिफात की हामिल है। वो अल्लाह नहीं है, یہ فرق ہے. ہم مخلوق ہیں, ہمیں اپنے خالق کی اچھا کے مطابق یہ اچھا جو ہے کہہ کے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک دن میرے بیٹے نے پوچھا کہ اچھا کو ختم کرنے کی اچھا بھی تو ایک اچھا ہی ہے نا. اس نے یہ ڈائلاگ کسی فلم سے سنا تھا, تو اس نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا. میں پہلے تو حیران ہوا, میں نے اسے پوچھا کہ یہ کس فلم کا ہے. اس نے فلم کا نام بتایا. پھر میں نے اسے کہا دیکھو بیٹے, اچھا کا اصل ترجمہ انہوں نے خواہش کر دی ہے. اصل ترجمہ ہے توقعات مت رکھو. بدھا نے وہ لفظ جو بولا, بدھا مہاتما بدھ نے جو لفظ بولا وہ یہ تھا کہ کسی سے کوئی توقع مت رکھو. جب وہ ٹرانسلیٹ ہوا تو وہ لفظ اچھا بن گیا ہندی میں. اب اچھا کا ایک ترجمہ ہے خواہش رکھنا. اس پہ اس فلم کے ہیرو نے ٹانٹ کی کہ اچھا کو ختم کرنے کی اچھا بھی تو ایک اچھا ہی ہے نا, خواہشات کو ختم کرنے کی خواہش بھی تو ایک خواہش ہے. دیکھیں کیا خوبصورتی سے اس نے ٹانٹ کی. بات کیا ہے کہ توقعات مت رکھو, اچھاؤں کو ختم کرو, توقعات کو ختم کرو. ہمیں توقع نہیں رکھنی. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ سے توقع رکھو, یعنی اللہ پہ توکل کرو. توکل ایک درجہ ہے. کس چیز کا؟ توقعات کو اللہ سے وابستہ کر لو, بہت اچھا درجہ ہے. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ استغنا ہے, کہ آپ اللہ سے بھی توقع نہ رکھیں. وہ کیسے؟ کہ آپ اللہ ہی پہ چھوڑ دیں, اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے. یہ استغنا ہے. روحانیت میں توکل کے بجائے استغنا کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمیں دیکھیں نا, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ پروردگار ہے, اللہ رب العالمین ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق چلنا ہے نا. ہم کون اتنے توقعات رکھیں, اور وہ بھی اللہ سے. یہ ہائر ڈگری آف اسپرچولیزم ہے. روحانیت کا انتہائی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ آپ درو بیس خود کو اللہ کے حوالے کر دیں. ہاں یا نہیں؟ اس کو استغنا کہا ہے قرآن اپنا روحانیت میں, تصوف میں. حضور قلندر باب اولیہ نے کیا بات فرمائی؟ اللہ الصمد. اللہ لا احتیاج ہے, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہمیں اپنی, ہم مخلوق ہونے کے ناطے حاجتوں سے آراستہ ہیں. ہمیں اپنی حاجتوں کو اللہ سے ایسوسیٹ کرنا ہے. اس صفت صمدیت کا عکس انسان کو اس طرح سے حاصل ہے کہ وہ اپنی توقعات کو, اپنی خواہشات کو اللہ سے جوڑ دے. حضور مرشد کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اس بے نیاز ذات سے نیاز مندی کا رشتہ جوڑ لیں, یعنی اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کر لیں. لیکن اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اپنی توقعات کو چھوڑ کے اسی پہ ڈیپینڈ ہو کرنا شروع کر دیں. قلندریت کیا ہے؟ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. کیا مطلب؟ कि वो कहता है मुझे अल्लाह से भी को ला इला, वो इल्ला नहीं कहता। कलंदर वो दर्जा है फिकर का जहां पे वो कहता है ला इला, कोई इला नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं मखलूक हूं अल्लाह की, अल्लाह मेरा ख्याल रखेगा, अल्लाह मुझे लुक आफ्टर करेगा ना। इस सोच का नाम है कलंदरियत।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई।
जी सर। सर ये कशफुल जू जो है इसको लुगत लुगत के इतबार से और रूहानी इतबार से एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
लुगत में जू का तर्जमा अगर हम अंग्रेजी में करें तो एथीरियल रैल्म कहेंगे, मादी जोन से पहले का दर्जा जो है इसको जू कहते हैं। वैसे लफ्ज जू जो है वो आबे जू, पानी की नहर, बहाव, क्या पानी के बहाव को आबे जू कहते हैं ना, हाँ या नहीं? अब आलम में जू क्या हुआ, जहां पे अल्लाह के जहन में जो प्रोग्राम चला है वो जब मादी जोन में दाखिल होने लगता है, मादियत में कन्वर्ट होने से पहले के आलम को आलम में जू कहते हैं। हजूर कलंदर बाबौलिया ने क्या कहा कि एक लोहे महफूज है, यानी अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह जो चाहता है उसको लोहे महफूज कहा। जब उसमें इंसानी इरादे शामिल हो गए, क्या हुआ?
इंसानी इरादे शामिल हो गए,
अब वो लोहे दोयम बन गई, अब उसका डिस्प्ले होने, उसको आलमे जू कहा, यानी अभी मटेरियलाइज नहीं हुई चीजें, लेकिन दे आर टेकिंग शेप, वेयर इन योर माइंड। वेयर
इन योर माइंड,
इन योर माइंड। देखिए ना, जो चीज आपके जहन में शेप पा रही है, शक्ल इख्तियार कर रही है, वो आपका आलम में जू है।
जो है
कश्फ का मतलब क्या होता है, इस कैफियत को जानना कि ये क्या चाहता है, ये जो कुछ चाहता है, जो कुछ आप चाहते हैं, अगर आपको पता चल गया तो ये आपका कश्फुल जू हुआ, अगर मुझे पता चल गया कि आप क्या चाहते हैं तो आप ये मेरा कश्फुल जू हुआ। अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो आप चाहते हैं
जी,
यानी आपके जहन का कि नदी किधर बहेगी इसको जानना कशफुल जू कहलाता है।
कलंदर बाबा मौर्या ने किताब दो कलम में जो है वो बताया है कि इंसानी जो मिराज है वो ये हिजाबे महमूद है,
नहीं मुकामे महमूद है।
नहीं वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है ना, बाकी आम इंसानों की जो
आप आम इंसानों देखें, अगर आपको हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल नहीं हुई फिर तो आप हिजाबे महमूद तक ही हैं। देखिए ये सिदरतुल मिंतहा के बाद हिजाबात है, हिजाब किसे कहते हैं, पर्दे लटके हुए, उन पर्दों के बीच में से जो एक रास्ता है वो हजूर अलैहिस्सलाम ने डिस्कवर की है, एक्सप्लोर की है और वो रास्ता उसी को पता चलता है जिसको हजूर सलाम की नस्बत हासिल हो, वरना तो आप बैतुल सिदरतुल में इंतहा पे रुक जाएंगे। जी और कोई सवाल?
सर ये ज़हन और रूह और ये नस्मा औरा इनकी इनको किस तरह से एक्सप्लेन करें?
देखिए एक चीज है ज़ात, ज़ात जो है वो अल्लाह की तजल्लिये ज़ात का एक नुक्ता है, वो जिस एनर्जी से काम लेती है उसको रूह कहते हैं। उसके तीन दर्जे, रूह हैवानी, रूह इंसानी और रूह आजम। ये जात और रूह मिलकर एक मीडियम बनाती हैं अपने पोटेंशियल्स के इजहार का। वो जो मीडियम है उसको जहन कहें या नस्मा कहें। अब नस्मा और ऑरा में फर्क है। नस्मा करंट है और उसकी स्पार्किंग जो है ये ऑरा है। जब आप नस्मा देखे ना, नस्मा मख्फी रोशनी है, यही जुमला लिखा है कि नहीं कुरान लौह कलम में कि नस्मा एक मख्फी रोशनी है जो दूसरी रोशनियों को दिखाने का जरिया है। अब जाहिर है कि नस्मा तो नजर नहीं आ सकता क्योंकि नस्मा जो है वो मख्फी रोशनी है, लेकिन उसकी वर्किंग यानी उसकी स्पार्किंग, जैसे करंट तार में बह रहा है तो आपको तार देख के पता चलता है कि इसमें करंट है। जब आप टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर के अंदर क्या होता है, उस करंट की मौजूदगी के इजहार के लिए एक लाइट जलती है। उस लाइट को आप ऑरा कह लें। अब वो करंट नहीं है तो फर्क वाजे हो गया। मैंने ये हजूर मुशरिक करीम से पूछा था कि जी ऑरा और नस्मा में क्या फर्क है, तो हजूर मुर्शिदे करीम ने ये बात वाजे की थी कि ऑरा जो है वो असल में नस्मा की रिफ्लेक्शन को कहते हैं। किसको?
रिफ्लेक्शन को,
यानी नस्मा। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने अपनी किताब लौह कलम में वाशगाफ लिखा है कि नस्मा जहन को कहते हैं और जहन की वर्किंग से आगे बॉडी बनती है, जिस्म बनता है। नस्मा जो है वो आपके मादी हदो हाल के लिए इसको अंसरियत का लिबास पहनाता है। जी जनाब।
जो नोए जिन्नात है उनका भी नस्मा होगा या उनका किस तरह से?
जी हाँ नस्मा है लेकिन वो पापा हेउल्ला है। क्या कहा ताजुद्दीन बाबौलिया ने?
जी पापा हेउल्ला
के तफक्कुर, ये तीनों चीजें फरिश्ता जिन्नात और इंसान तफक्कुर के पैटर्न है। एक वो जो पापा नूर है, एक वो जो पापा हेउल्ला है, एक वो जो पापा गिल है। ठीक हो गया
जी। ये सर इंसानों में जिस तरह से नस्मा जो है मादी जिस्म बना रहा है तो उनका नस्मा जो है वो रोशनी का जिस्म बना रहा होगा,
हेउल्ला
हेउल्ला बना रहा होगा। ठीक है। और सर ये जो इंसान के अंदर जो सेल्स हैं वो बताए जाते हैं कि जो जीनियस ट्रीन بندہ ہوتا ہے وہ 300 350 تک جو ہے اس کے سیل
250
پی ایچ ڈی لیول 250 جو ہیں جی, تو یہ جس بندے کو نظمہ اور یا جس کو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی کیا کیلکولیشن ہو سکتی ہے, کتنے اس کے سیل چارج ہوں گے؟
اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے کیا پتا. دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے, اب آپ نے لفظ فرشتے کو چونکہ ڈیسائفر نہیں کیا, ادھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نور کی مخلوق, میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈیسائفر کریں لفظ نور کو. نور کو ڈیسائفر کریں گے تو لفظ خیال بنتا ہے, تو خیال کی مخلوق.
جی
اس کو فرشتہ کہیں گے. وہ تفکر جو خیال کی سطح پہ وجود رکھتا ہے, ہاں یا نہیں؟ بھئی نوری مخلوق ہے نا, نور کسے کہتے ہیں؟ خیال کو ہی کہتے ہیں نا. تو خیال کے درجے پہ جو مخلوق بنی اس کو کیا کہا؟ وہ تفکر جو خیال کے درجے پہ مجسم ہو گیا اس کو آپ ملائکہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں. بھئی آپ کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے, چھوڑیں باتیں کر رہے ہیں.
نومبر کے یہ کلندر شو ڈائجسٹ کے اندر جو ہے ابا جان نے آج کی بات میں یہ لکھا ہے کہ جو عالم عراق کے لوگ ہیں وہ خیال میں آ کے جو ہے بات کرتے ہیں, یعنی مفہوم یہ ہے اس کا.
جی جی,
تو اٹ مینز کہ اگر کوئی عراق میں جو انسان منتقل ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے اس طرح سے, تو وہ خیال کے لیول پہ جو ہے انسپریشن جو ہے ان کی ان سے موصول ہوتی ہے.
جی ہاں, آپ ذرا تفکر کر کے اس پہ, مطلب اس کو غور کر کے پڑھیں. انہوں نے لفظ کنویئر بیلٹ استعمال کیا ہے کہ اب عرفان بھائی جس دن پیدا ہوئے وہ بھی تو اسی کنویئر بیلٹ کے ایک نقطے پہ ہے نا. آج عرفان صاحب جہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اسی کنویئر بیلٹ پہ. پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام لمحے اس کنویئر بیلٹ پہ, ہر لمحہ اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں؟
جی بالکل.
اسی طرح آپ کی وفات تک کے تمام لمحات اسی کنویئر بیلٹ پہ موجود ہیں یا نہیں؟
جی بالکل.
بات ہے صرف زاویہ نگاہ کی. اب پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں, آپ آگے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں مستقبل کو سوچ رہا ہوں. اگر آپ ذرا زحمت کریں اور ذرا تصور کریں کہ جب آپ کی آخری سانس لے لی جائے, جب آپ اپنی آخری سانس لے چکے ہوں, پھر آپ کے ساتھ کیا بیتے گی؟ اس مادی زون میں آپ کے آپ کو عرفان کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ میت کو نکالو, لاش لے کر آؤ, جنازہ لے کر آؤ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ کنویئر بیلٹ پہ تو آپ آگے چلے گئے. اب وہ عالم جہاں آپ کا مادی وجود نہیں ہے لیکن آپ تو ہیں نا, اب اس کو عالم اعراف کہہ لیجیے. جھٹکا لگا. بات یہ ہم بیک وقت
سر اسی جگہ پہ عالم اعراف بھی ہے.
آپ جب سوتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو عراف کہاں ہوا؟ بھیا آپ کے اندر ہی ہوا نا. اور اصل انسان کہاں ہے؟ آپ کے اندر. تو یہ تمام عالمین کہاں ہیں؟ اس اصل انسان کے ساتھ لگے ہوئے کہ نہیں؟ جی ایسی اڈے ویلے ہی نہیں گئے توجہ دیئے. گل اتنی سی ہے, انی جنی گل, انی اور جنی, یہ انی بھی ہے اور جنی بھی. تبھی تو دنیا میں آیا
جی, اور آخر ہوتا ہے پھر.
یعنی کیا ہوا؟ یہ پروسیس ہے جس سے آپ کو گزارا جا رہا ہے تاکہ آپ تجرباتی اور محسوساتی زون سے آگاہ ہو سکے. آپ کی غلطی کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی معصومیت. بھئی شیطان نے آپ کو بہکایا نا, آپ بہک گئے. کیا ہوا کہ بھئی دنیا میں جاؤ اور اس کو ڈیفیٹ کرو. آپ اور ہم آ کے اسی کی گود میں بیٹھ گئے تو بتائیے آپ ڈیفیٹ کریں گے یا آپ اس کے پروردہ کہلائیں گے؟
جی اسی کے ساتھی.
ساتھی نہیں, میں نے لفظ پروردہ استعمال کیا ہے. ساتھی تو چھوٹا لفظ ہے. اللہ رب کریم نے صاف کہا, اس نے کہا دیکھ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا تو میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا, اگر وہ بہکیں گے تو وہ تیرے بندے ہوئے. اللہ میاں نے تو کرائٹیریا ہی صاف کر دیا. اگر آپ شیطان کا شکار ہوئے اور شیطان کے کہنے میں چل رہے ہیں آپ اور میں کیا ہوئے؟ تو اللہ نے کیا کہا آگے سے کہ میں ان کو تجھ سمیت جہنم رسید کر دوں گا. کہا یا نہیں؟ کون سی صورت میں؟ سورہ بقرہ میں. کیا کہا؟ اگر یہ تیرے بہکاوے میں آئیں گے تو یہ میرے بندے نہیں ہوئے. God has disowned them who are not able to defeat Satan. غور کریں, yes یا no? Where do we stand? We are stand amongst the defeated ones, not the defeaters. کیا ہم نے شیطان کو ہرا لیا؟ ہم اللہ والے کیسے بن گئے؟ بن سکتے ہیں؟ اللہ نے واشگاف کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے چکر میں, تیرے چکمے میں نہیں آئیں گے. کہا یا نہیں؟ بس دیکھی جا مولا دے رنگ. جہنم میں.
جی.
जी वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर एक क्वेश्चन करना था, अभी आपने फरमाया है कि वो हमारे अंदर है,
पूरी कायनात हमारे अंदर है, अल्लाह भी हमारे अंदर है, वफी अनफुसकुम।
मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है कि जब इंसान फौत होता है तो कहते हैं आलम अरवा में चला जाता है,
आलम एराफ में, आलम एराफ में, आलम एराफ में। देखें ये कंफ्यूजन्स हैं, इनको रिजॉल्व करें। जब आप सोते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आलम एराफ में। जब आप परमानेंटली वहां स्टे कर जाते हैं तो आप क्या होते हैं? आप फौत हो जाते हैं। यानी जब हम सोते हैं तो नींद को आधी मौत कहा है या नहीं? क्या मतलब हुआ? मतलब वाज़े है, मतलब ये है कि हम आलम राफ में जाते हैं तो आलम राफ कहाँ हुआ? हम कहीं जाते हैं, हमारा जिस्म जो है वो तो वहां बेड पे पड़ा होता है, तो हम कहाँ होते हैं? हम अपने इनर में उतर जाते हैं। तो आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि आप आलम राफ आपके अंदर है? जब आलम राफ आपके अंदर है तो जाहिर है यौमुल कयामा भी आपके अंदर है और हशर नशर भी आपके अंदर है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बे करीम का इरशाद है कुरान हकीम में, वफी अनफुसकुम, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अफला तो फिर क्यों नहीं, तुबसिरून तुम इसको देखते, यानी तुम इसका मुशाहिदा क्यों नहीं करते? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, मैं कह रहा हूं?
अल्लाह कह
रहा है। हम अल्लाह की बात को तवज्जो नहीं दे रहे, हमने अल्लाह की बात को तवज्जो दी ही नहीं। हम मुआशरती तर्जों में पता नहीं क्या खिचड़ी पका के बैठे हुए, जब तक आप उस खिचड़ी से बाज नहीं आएंगे, क्या आपको अल्लाह की बात समझ आ जाएगी? अल्लाह की बात को समझने के लिए आपको अल्लाह ही की तर्ज फिक्र अपनानी है ना, हाँ या नहीं? बस इन्नी जिन्नी गल है, ये इन्नी और फिर जिन्नी, सारा खेल सिर्फ अल्लाह की तर्ज फिक्र को अपनाने का है। सारी रूहानियत कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमें अल्लाह की तर्ज फिक्र हासिल हो जाए। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया सर?
जी सर, थैंक यू।
अल्लाह खुश रखे। चलें रहती है बात, क्योंकि माशाल्लाह आज भी ये पूरा हो चला वक्त, फिर रहती है बात, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।